ये आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र मणि राजेश से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इसे एक निर्णायक शक्ति कहा जो इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रही है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए इस बात पर बल दिया कि एआई किसी भी पिछली महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के विपरीत है, जिसके लिए शासन के लिए वैश्विक दायित्वपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि में क्रांति लाकर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को तेज और अधिक प्रभावी बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एआई की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने, जन केंद्रित अनुप्रयोग बनाने और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में सभी को एआई लाभ सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।
AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster.
प्रधानमंत्री ने एआई अपनाने में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करते हुए देश के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के बारे में बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी एआई शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी बल्कि दुनिया की प्रगति में भी योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश का ऊर्जा क्षेत्र इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। सम्मेलन का विषय समेकित स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह है। राज्यसभा में आज आम बजट 2025-26 पर फिर से चर्चा शुरू हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के भागवत कराड ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण राजकोषीय घाटा 0.4% तक कम की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लीकेज को रोकने में सहायक साबित हुआ है, इस कारण सरकारी खजाने की भी बचत हुई है। इस चर्चा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर चर्चा की फिर शुरुआत हुई। इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने विकसित भारत विजन और किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी कोई भी रूपरेखा नहीं होने का आरोप सरकार पर लगाया। श्री यादव ने आरोप लगाया कि बजट एक लक्षित बजट है, यह धनी और उद्योगपतियों पर केंद्रित बजट है। उन्होंने महाकुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में ट्रैफिक जाम की स्थिति को लेकर सरकार की आलोचना की। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी ने कहा कि देश महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान देकर तीव्र विकास कर रहा है। चर्चा जारी है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज मुंबई में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री द्विवेदी ने सभी विभागों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम दर्शकों की पसंद के होने चाहिए। श्री द्विवेदी ने वेब्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की। यह सम्मेलन इस वर्ष 1 से 4 मई तक मुंबई में होगा। चीन के किंगडाओ में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप की आज से शुरुआत हो गई है। भारत ग्रुप डी में दक्षिण कोरिया और मकाओ के साथ शामिल है। उसका पहला मैच कल मकाओ से होगा। ग्रुप में भारत अपना दूसरा मैच 13 फरवरी को दक्षिण कोरिया से खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।